Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
Namaskar, Karobari Khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Aaj somvar hai aur aaj hum Karobari Khabron ke saath aapke prashnon ko bhi karyakram mein shamil karte hain. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और खबरों पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे समक्ष उपस्थित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. नमस्कार शिशिर.
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का.
बहुत बहुत स्वागत आपका.
धन्यवाद.
वी बिगिन विद द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल अराउंड 0.4%. सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 350 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 26,000. India's industrial output surges by 6.7% in November, led by manufacturing, and all Australian tariff lines to be zero duty for Indian exports from the 1st of January next year, says Commerce Minister Piyush Goyal.
देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में लगभग 0.4% की गिरावट आई. सेंसेक्स में लगभग 350 अंकों की गिरावट दर्ज की गई. वहीं निफ्टी 26,000 से नीचे रहा. भारत के औद्योगिक उत्पादन में इस वर्ष 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई. और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात के लिए सभी ऑस्ट्रेलियाई टैरिफ लाइनों में शून्य शुल्क लगेगा.
The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
रुक करते हैं आज की पहली खबर से. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र में लगभग 0.4% की गिरावट के साथ बंद हुए. वैश्विक बाजार के मिले जुले संकेतों के बावजूद दोनों सूचकांकों ने बढ़त के साथ शुरुआत की. हालांकि दोनों ही सूचकांक शुरुआती बढ़त को बरकरार रखने में विफल रहे और सत्र के दौरान घाटे में कारोबार करते नजर आए. सेंसेक्स 346 अंक गिरकर 84,696 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 100 अंक गिरकर 25,942 पर आ गया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार सूचकांकों ने भी शीर्ष सूचकांकों में गिरावट को दर्शाया. मिड कैप सूचकांक 0.4% से अधिक नीचे और स्मॉल कैप सूचकांक लगभग 0.6% की गिरावट के साथ बंद हुए.
एंड मीनवाइल वी आर जॉइंड इन बाय आवर फर्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, भानु. भानु वेलकम.
सर गुड मॉर्निंग. गुड इवनिंग सर.
गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. बताइए
सर. मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम तीसरी इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि तीसरी इकोनॉमी जापान को भी हम पार कर गए, लेकिन विदेशी निवेश कम हो गया हमारे स्टॉक में. क्या दिक्कत क्या आ रही है? विदेशी निवेश क्यों नहीं आ रहा है? क्यों
भानु, मुझे लगता है थोड़ा सा आप स्पष्ट कर लें. अभी हम तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं बने हैं, चौथी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पे हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. रहा सवाल कि हमारे यहाँ विदेशी निवेश कम क्यों हो रहा है, तो देखिए विदेशी निवेश बढ़ा है. हाँ, उसके बढ़ने की रफ्तार को लेकर के आप प्रश्न जरूर उठा सकते हैं कि क्या वो रफ्तार पर्याप्त है या नहीं है. उस रफ्तार के बढ़ने के पीछे कई और तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं. जैसे अभी वैश्विक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए कई विदेशी निवेशक जो हैं, कई कंपनियां जो हैं, वो दूसरे देशों में नया निवेश करने से हिचक रही हैं, बच रही हैं। तो जैसे जैसे वैश्विक स्थिरता हमें देखने को मिलेगी, हमारे यहाँ निवेश और रफ्तार से बढ़ेगा, बढ़ा है लेकिन रफ्तार धीमी है।
दिल्ली से हमारे साथ हिमांशु जुड़ रहे हैं। हिमांशु, अपना सवाल पूछिए।
हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। मैम मैं आज के जो गोल्ड प्राइसेस की मूवमेंट है उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी चाहता हूँ। जैसे आज काफी बड़ा था लेकिन वो अचानक डाउन आ गया, तो मैम उसके बारे में जरा बताएंगे।
देखिए, सोना और चांदी इस समय दोनों ही ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं और इस साल का अगर हम देखें 2025 में देखें तो दोनों ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि निवेश जब आप ऊंचे स्तर पर करते हैं तो आपको और ऊंचे स्तर पर आने का इंतजार करना पड़ता है ताकि आप मुनाफा वसूली कर सके। ऐसे में एक बेहतर विकल्प ये हो सकता है कि आप किस्तों में जो गोल्ड ETF है उसमें पैसा लगाएं। यदि आप सोना खरीदना ही चाहते हैं तो सोने के बिस्किट खरीदे, गहनों में निवेश मत करिएगा।
यस, एंड द बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस टुडे, द सेंसेक्स एंड द निफ्टी एंडेड द फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक विथ लॉसेस ऑफ अराउंड 0.4%। डिस्पाइट मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज, बोथ इंडिसेस ओपन्ड हायर। हाउएवर, दे फेल्ड टू होल्ड ऑन टू द इनिशियल गेन्स एंड ट्रेड इन द नेगेटिव जोन फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन। The Sensex fell 346 points to close at 84,696, while the Nifty dipped 100 points to settle at 25,942. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange mirrored the weakness in the frontline indices. The mid-cap index settled over 0.4% down and the small-cap index lost almost 0.6%.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 22 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने वाली कंपनियों में अदानी पोर्ट्स 2.2% से अधिक गिरे, HCL टेक और पावर ग्रिड 1.8% से अधिक गिरे और ट्रेंट के शेयर लगभग 1.4% गिरे। शीर्ष लाभ कमाने वालों में टाटा स्टील्स में 1.8% से अधिक की तेजी आई, एशियन पेंट्स में 1% की वृद्धि हुई और इटर्नल में 0.5% का इजाफा हुआ।
एंड अक्रॉस द सेक्टोरल इंडिसेस एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 18 आउट ऑफ 22 सेक्टर्स रजिस्टर्ड लॉसेस। अमंग द टॉप लगार्ड्स, यूटिलिटीज ड्रॉप 0.9%, पावर डिप्ड नियरली 0.9% एंड IT लॉस्ट 0.8%। इन द गेनर्स, ऑयल एंड गैस क्लाइम 0.3%, टेलीकम्युनिकेशंस गेन 0.1% एंड द PSU बैंक अलॉन्ग विद FMCG क्लोज्ड मार्जिनली अप। द ओवरऑल मार्केट ब्रेथ एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज नेगेटिव। Shares of 2,748 companies declined, 1,568 advanced and 196 remained unchanged.
अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 13 पैसे गिरकर 89.97 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। डॉलर सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में 98.12 पर कारोबार कर रहा था। वहीं दिल्ली से हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं। अमित जी, कृपया अपना सवाल पूछिए।
जी नमस्कार मैडम, सभी को सर से सवाल। नमस्कार सर।
नमस्कार,
मेरा प्रश्न ये है सर कि जो ऑस्ट्रेलियन संदर्भ में जो जीरो टैरिफ का मतलब ये समझो जैसे पीयूष गोयल जी ने कहा है, तो हमारे देश जो हम जो भारत से निर्यात करेंगे ऑस्ट्रेलिया को, उसके वो इंपोर्ट बिल ड्यूटी नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज सर कि जो हमारे देश की आर्थिक वृद्धि में सारे सेक्टर का सहयोग है, बट GDP में, ग्रोस प्रोडक्शन में, लेकिन कृषि क्षेत्र की मैं देखता हूँ कि सर उत्साहजनक आंकड़े नहीं आ रहे, क्योंकि दाल दलहन और तिलहन में अभी भी हम आत्मनिर्भर, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर की बात सही लगती है, परंतु खाद्यान्न और दलहन में हम कब तक आत्मनिर्भर हो पाएंगे सर? अभी भी हम कनाडा से दाल जैसी बेसिक जो नीड की चीज होती है सर वो हम इम्पोर्ट करते हैं। धन्यवाद सर।
देखिए अमित जी, आपका जो पहला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया से, तो जब कभी भी किसी भी देश के साथ जो हमारा मुक्त व्यापार समझौता होता है तो उसमें कई तरह के सामान पे जो है वो आने जाने के ऊपर कोई भी आपको शुल्क नहीं देना पड़ता है। अभी भी कुछ सामान है जिन पर, जैसा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि पहले जनवरी से वो लागू होगा। दूसरा जो आपका प्रश्न है कृषि को लेकर के, देखिए कृषि के मामले में एक बड़ी विडंबना यह है कि देश की बड़ी आबादी उस पर निर्भर है लेकिन किसान को अपनी कीमत तय करने की आजादी नहीं होती है। तो जिसकी वजह से आप जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैं उसके साथ एक और शब्द जोड़ देता हूं, वो है ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ये जो जीडीपी और जीबीए है इससे हम लोग आर्थिक विकास को मापते हैं। तो जीडीपी के जरिए हम लोग देखते हैं कि देश में मांग की स्थिति क्या है और जीबीए के जरिए हम देखते हैं देश में आपूर्ति की स्थिति क्या है। तो चूंकि कृषि में कीमतें जो हैं वो काफी हद तक नियंत्रित की जाती है जिसकी वजह से वो आपको उसमें अर्थव्यवस्था में उस बड़ी भागीदारी के तौर पर नहीं दिखती है। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि दलहन की बात है जहां पर हमारी आत्मनिर्भरता नहीं है, ये बात सच है कि दाल के मामले में और तिलहन के मामले में हम थोड़े से अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, लेकिन दलहन मिशन और तिलहन मिशन की बदौलत हमें उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में स्थिति काफ़ी सुधार होगा और हमारी आत्मनिर्भरता जो है वो खाद्यान्नों के साथ साथ दलहन और तिलहन में भी देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट कॉलर इज राकेश फ्रॉम शिमला। राकेश वेलकम।
जी नमस्कार।
नमस्कार, सवाल पूछिए।
मेरा दो सवाल है और पहला सवाल मेरा ये है कि शेयर मार्केट में हम पार्टनरशिप में अगर पैसा लगाना चाहते हैं किस तरह से लगा सकते हैं, और दूसरा मेरा ये सवाल है कि बागवान क्षेत्र में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं शेयर मार्केट के द्वारा।
राकेश जी आपने पहला प्रश्न क्या पूछा, शेयर बाजार में
जैसे पार्टनरशिप में अगर अपना इन्वेस्ट कर दे तो किस तरह से हम कर सकते हैं।
राकेश जी देखिए शेयर बाजार जो है वो आपका कोई ऐसा कहते हैं ना व्यापारिक कोई संस्थान नहीं है, आप वहां पर निवेश कर सकते हैं, आप व्यक्तिगत अवसर पर करें या फिर आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के करें, किसी एक साझेदार के साथ करें, इस तरह की व्यवस्था का कोई मतलब नहीं बनता है, आप व्यक्तिगत तौर पर जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि बागवानी के जो क्षेत्र हैं वहां पर शेयर बाजार के जरिए कैसे निवेश किया जा सकता है, देखिए बागवानी के मामले में आप शिमला से आते हैं, हिमाचल प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण खासतौर पर हम सेब की बात करें या कई तरह के फलों की बात करें वो काफ़ी अच्छे वहाँ पे उत्पादन होते हैं, और उसके लिए आपको शेयर बाजार में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास ज़मीन का कोई भी टुकड़ा है जहाँ पर आप सेब लगा सकते हैं तो आप उसके जरिए आप उसमें पैसा निवेश करें। शेयर बाजार और बागवानी के बीच में सीधा सीधा संबंध आपको नहीं बनेगा। हाँ, बागवानी क्षेत्र से जुड़े या फूड प्रोसेसिंग से माफ कीजिएगा कि जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनमें आप निवेश कर सकते हैं।
जी शिशिर जी, दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। केशव अपना सवाल पूछिए।
हेलो नमस्कार जी।
नमस्कार।
हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे 91 में एक बार बहुत बड़ा शेयर घोटाला हुआ था, अब इस तरह से जो मार्केट है सोना चांदी की इतनी हाई होती जा रही है, आम आदमी सोचना ही बेकार है खरीदने के लिए, तो ये कहीं घोटाला कहीं बीच में कहीं होने के चांसेस ऐसे तो नहीं है कि ऐसा हो सकता है।
केशव जी परिस्थितियां दो अलग अलग हैं। आपने जिस 1991 की बात की वो हमारी अपनी कंपनियों की बात थी, जो कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं या जो कंपनियां भारत में बनी हुई हैं जो अपना धंधा कर रही हैं उनके शेयरों में अप्रत्याशित तौर पर उतार चढ़ाव लाया गया था। अभी जब हम सोने चांदी की बात करें वहां पर कीमतों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वहां पर चूंकि हम एक बड़ी तादाद आप कह लीजिए लगभग करीब करीब जितनी हमारी मांग है उसके लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जब प्रतिकूल हों, वैश्विक अनिश्चितता देखने को मिल रही हो तो सोने और चांदी में आपको उतार चढ़ाव आपको काफी देखने को मिलेगा, और इस समय तो सोने और चांदी दोनों में ही काफी तेजी, और खासतौर पर चांदी की बात करें जो कि अप्रत्याशित तौर पर सोने से कहीं आगे निकल गया, और उसमें दोनों बातें हैं, चांदी चूंकि औद्योगिक इस्तेमाल की भी चीज है और उसके अलावा जिसको हम लोग हेजिंग में भी करते हैं, लेकिन हाँ हेजिंग में ज्यादातर सोने का इस्तेमाल होता है, तो चांदी और सोना दोनों काफी तेजी है और दो अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो दोनों को आपको अलग अलग परिस्थितियों से देखना चाहिए। रहा सवाल गड़बड़ियों का और घोटालों का, यहां पर उसके लिए कोई भी स्पष्ट तौर पर कहना कि गड़बड़ी हो रही है वो उचित नहीं है।
टिंकू फ्रॉम बिहार।
नमस्ते सर।
नमस्ते, सवाल पूछे।
सर मैं ये पूछना चाहते पोस्ट ऑफिस में कोई गोल्ड पॉलिसी है और एक LIC में भी गोल्ड है, ये क्या गोल्ड है, गोल्ड में वो गोल्ड कोई पॉलिसी है उसमें निवेश करने के लिए इसका जानकारी चाहिए, गोल्ड क्या है पोस्ट ऑफिस और LIC में भी एक गोल्ड नाम का कोई पॉलिसी है।
यही जानकारी हमें चाहिए।
देखिए डाकघर में गोल्ड पॉलिसी माफ कीजिएगा अभी मेरी जानकारी में तो नहीं है, डाकघर की अलग अलग योजनाएं हैं जहां पर आप पैसा लगा सकते हैं, चाहे वो आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सुकन्या समृद्धि, घर में अगर बिटिया 10 वर्ष से कम उम्र की है तो आप सुकन्या समृद्धि शुरू कर सकते हैं। ये 12 तरह की योजनाएं हैं जो कि डाकघरों के जरिए उपलब्ध हैं, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि में आप बैंकों के जरिए भी जो है उसमें पैसा लगा सकते हैं, हालांकि वो डाकघरों की छोटी बचत योजना के तौर पर ज्यादा जानी जाती है। LIC की जहां तक बात है, वो गोल्ड की अगर हम लोग बात करें तो कुछ निवेश जो उनके जो बीमा पॉलिसी है उनमें गोल्ड नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन सोने को लेकर के अगर आप निवेश की बात कर रहे हैं, जैसा अभी एक और भी प्रश्न था इसके ऊपर, तो गोल्ड ETF होता है जो कि अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियां चलाती हैं, उनमें आप पैसा लगा सकते हैं। और गोल्ड अगर आप फिजिकल मेटल आप खरीदना चाहते हैं तो आप बिस्किट खरीदें। और चूंकि पहले प्रश्न के जवाब में ये भी था कि परिस्थितियां कैसी बन रही हैं, तो देखिए अभी जब तक वैश्विक अनिश्चितता बनी रहेंगी तब तक सोने और चांदी में हमें तेजी देखने को मिलती रहेगी।
रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। प्रमुख एशियाई शेयर बाजार का रुख आज मिला जुला रहा। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.7% और जापान का निकेई 0.4% से अधिक गिरा। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स मामूली रूप से नीचे रहा। वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक 2.2% ऊपर बढ़ा और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। आज प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में तेजी देखी गई। जर्मनी का डैक्स 0.3%, फ्रांस का कैक 0.2% और लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक लगभग 0.2% ऊपर कारोबार करता नजर आया। दिल्ली से योगेश शर्मा जुड़ रहे हैं। योगेश जी अपना सवाल पूछिए।
मेरा सवाल ये है कि जैसे रेपो रेट कम होता है या बैंकों में ब्याज दरें कम होती हैं तो इसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो जो लिक्विड फंड होते हैं और जो शॉर्ट टर्म डेट फंड होते हैं इनमें इनका पर्टिकुलरली अगर वो इंटरेस्ट रेट कम होंगी तो वो उनका रिटर्न बढ़ेगा या रिटर्न भी कम होगा?
उसमें आपका यील्ड जो है वो बढ़ेगा लेकिन रिटर्न जो है वो प्रभावित होता है। देखिए इसका सीधा सीधा फंड आप ये सोचिए कि अगर जब ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तो वो बॉन्ड जो है वो ज्यादा आकर्षक हो जाता है, और जब ब्याज दरें कम हो जाती है तो बॉन्ड जो है वो जाहिर सी बात है। लेकिन ब्याज दरें बढ़ने का एक नुकसान ये भी होता है कि डेट फंड के लिए वो प्रतिकूल ही असर डालते हैं। इसीलिए ऐसी परिस्थितियों में जब ब्याज दरें जब एक तरीके से घटाने का सिलसिला बना हुआ है तो वहां पर ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिन स्कीम्स में आप अभी अगर पैसा लगाते हैं तो आपके लिए एक फायदा हो सकता है। डेट फंड की अगर हम लोग बात करें या लिक्विड फंड की बात करें, वैसे एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि म्यूचुअल फंड पर और विस्तार से, चूंकि रविवार का जो पूरा मार्केट मंत्रा का संस्करण होता है वो म्यूचुअल फंड पे होता है, तो वहां पर भी आप अगर इस प्रश्न को पूछेंगे तो शायद आपको ज्यादा और बेहतर जवाब मिल पाएगा। एक प्रश्न जो उन्होंने अभी टिंकू साहब ने पूछा था बिहार से गोल्ड को लेकर के, दरअसल वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से वो कर रहे थे। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है उसको कई बार जो है वो पोस्ट ऑफिस गोल्ड स्कीम के तौर पे भी, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड टिंकू जी बंद हो चुका है, अब कोई स्कीम नहीं आ रही है। हाँ, पुरानी जो स्कीम्स हैं वो सेकेंडरी मार्केट में आप उसको खरीद सकते हैं, वो काफी आकर्षक योजना है, वो आप मुझे लगता है शायद उससे उसको संबंध कर रहे थे।
विजय फ्रॉम ठाणे इज जॉइनिंग अस। विजय
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग।
मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जो हम लोगों ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है ऑस्ट्रेलिया से, तो कौन से कंपनीज को उसका बेनिफिट मिलेगा, इंडियन कंपनीज को, और कौन से कंपनीज को हमको हमारे रडार पर रखना चाहिए?
देखिए हम लोग कंपनी विशेष का नाम तो नहीं ले सकते हैं, इस कार्यक्रम की नीति है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो क्षेत्र विशेष है, चाहे वो सर्विसेज से सेक्टर से जुड़ी हुई हों, चाहे वो आपके मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई हों, तमाम क्षेत्रों में, चूंकि इसमें जो टैरिफ लाइन जो जीरो करने की बात है उसमें कई सेक्टर से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसीलिए आप एक विशेष आप कहें कि एक खास क्षेत्र की बात मैं नहीं कहूंगा, अभी सभी क्षेत्र बेहतर हैं और उनमें हमको ये देखना होता है कि उस क्षेत्र में कौन सी ऐसे कंपनियां हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया के साथ काफी अच्छा संबंध है, वो उस कंपनी के विशेष की हम चर्चा इस कार्यक्रम में नहीं कर सकते हैं।
भारत के औद्योगिक उत्पादन में इस वर्ष 6.7% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि वार्षिक आधार पर नवंबर में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा दर्ज की गई है। IIP ने अक्टूबर में संशोधित वृद्धि दर 0.5% से बढ़कर एक ठोस वापसी की है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन में ये उछाल विनिर्माण क्षेत्र में 8% की वृद्धि के कारण हुआ है। आईआईपी के अन्य प्रमुख घटकों में खनन गतिविधि में 5.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये वृद्धि मॉनसून के अंत और लौह अयस्क यानी आयरन ओर सहित धातुविक खनिजों यानी मेटलिक मिनरल्स के बावजूद उत्पादन की वजह से हुई है। वहीं बिजली के क्षेत्र में ये अक्टूबर माह में 6.9% से लुढ़ककर 1.5% रह गई।
शिशिर जी, 6.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज क्वाइट समथिंग, क्वाइट फिनोमिनल। सो ऑफ कोर्स द मैन्युफैक्चरिंग एज वी सी इट वाज ड्रिवन बाय 8% ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स एज वेल। सो amongst the all the uncertainties and all the should we say the headwinds that we are witnessing at the moment, how do you see this data coming up and kind of pushing the economy?
Yeah, there are 2-3 factors. The most important factor is that last November the growth rate was 5%. So on that 5%, if you have a growth of 6.7%, that is really remarkable.
Yes.
The second thing which we need to remember here, that apart from the manufacturing, mining has done very well. And mining, why it has done very well? Because after rain, we have seen good performance of the mining sector, and that is getting reflected in this area.
Yeah.
The third factor which is important is the consumer durable and consumer non-durable, where we are seeing very good growth. And please remember that after festival season, there is something called destocking and restocking. So in the festival season, we have gone for destocking. That means we have completely exhausted our stock because of the higher sale. After festival, we need more stocks because, you know, during that November and the first fortnight of December is marriage season. Because after 14th December, there is no lagan or what we call it, the inauspicious month is there.
Yes.
So during 1.5 months, we see a good amount of sale on account of marriage. So that is also helping companies to produce more. And that is what we are seeing in the terms of manufacturing, and especially in the manufacturing, when you talk about the consumer durable and non-durable sectors.
Right. And moving on to some other stories, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that 100% Australian tariff lines will be zero duty for Indian exports from the 1st of January next year. He said this will unlock fresh opportunities for labor-intensive sectors on the third anniversary of the India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement. Mr. Goyal said that the agreement has delivered sustained export growth, deeper market access, and stronger supply chain resilience over the past 3 years. In a social media post, the minister highlighted that the agreement is benefiting Indian exporters, MSMEs, farmers and workers. Mr. Goyal said that the country's exports to Australia grew by 8% in 2024-25, improving the country's trade balance. Shishirji, zero duty for in the Australian tariff lines for the Indian exports, you know, in a couple of days, it's happening from the 1st of January. What do you make of it, especially, you know, given the Trump thing that we witnessed over the past year or so?
In fact, the answer is the same thing. Considering the kind of uncertainty we have with the US, and also we need to understand that European countries are not doing well. And there are some kind of slowdown there. So that is why we have to look for new market. And if you can remember, this is not the first FTA. We have 7 FTAs till date. The previous one was with the Oman, if I can remember correctly. And all these 7 FTAs are giving us alternative market where we can increase our export. And why export growth is necessary? Because that is going to boost the manufacturing. We just came to know about this manufacturing sector performance in the month of November. And if we have to continue with that, there we need a lot of improvement in the export front, on the export front. And that is going to help on the export front.
Right.
जी, वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। इस वर्ष नीतियों को प्रगति में बदलते और प्रगति के इरादे वाले सपनों को साकार होते देखा। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस साल रेल, सड़क, हवाई, समुद्री और डिजिटल नेटवर्क के बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है।
साल 2025 में बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें रेल, सड़क, हवाई, समुद्री और डिजिटल नेटवर्क शामिल है। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे पर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए, जो देश की जीडीपी का 3.1% है। इस साल रेलवे के क्षेत्र में कई नए कीर्तिमान स्थापित हुए। देश का मेट्रो नेटवर्क 2025 में बढ़कर 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया है। वहीं बिहार में पहली वंदे मेट्रो शुरू हुई। इसके अलावा विमानन क्षेत्र में भी बड़ा मुकाम हासिल किया। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। हवाई अड्डों की संख्या 2025 में बढ़कर 163 हो गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई भी 1,32,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। देश के बुनियादी ढांचे में हो रहे निवेश न सिर्फ अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दे रहे हैं, बल्कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
Shishir ji, we have had enough talk and discussions about gold and silver, but let's come back to equity now. The year 2025 have been quite a turbulent one, as all of us know. There have been multiple factors, of course, you know, the headwinds kind of coming in. But with the new year, can we hope that things might reverse a little bit, especially, you know, with the peace efforts being made by the U.S. president? We just heard that the Ukrainian president would be meeting the U.S. president Donald Trump in Florida. He was to meet, you know, last night. So how do you see this development happening, and can we see some silver lining coming up in the new year?
So as of now, we are not very hopeful of what will happen during the, at least for the first couple of months of the 2026. But the things which we can expect in 2026 is that the more aggressive buying by the domestic financial institutions. Mm-hmm. In fact, during 2025, you must have noticed that in many of the months, foreign portfolio investors were, net seller. Mm. And on the contrary, the DFIs were the net buyers. So they have given support to the Indian equity market. And that is why we are seeing the level which we were not very sure in the beginning of 2025. Mm. So in 2026, we are expecting that more aggressive buying by the DFIs, and FPI selling will depend upon two factors. Number one, that you rightly mentioned about the peace initiative. And the second thing is what kind of Federal Reserve action would be there. I mean, if they are going to cut the interest rate again, then we will see more inflow there. But still, foreign portfolio investors are very, very cautious about putting money in any other economies because of the global uncertainty.
Absolutely. And moving on to crude now, the global crude oil prices jumped around 2% today. Brent crude was trading nearly 2% up at $61 and 83 cents per barrel. And the WTI crude was trading 2.1% up at $57 and 96 cents per barrel when reports last came in. Meanwhile, investors weighed talks between the US and Ukrainian president on a possible peace deal. Sentiment was also influenced by concerns over possible oil supply disruptions in West Asia. Shishirji, again, the question comes back. You know, of course, among all the turbulence, the crude is kind of again jumping up. It's going up. Where do you see this?
Level is very difficult to tell you, but it all depends upon what kind of discount Russia is going to offer and how they are going to sell their produce. Because at this moment, because of the sanction and the other things, the Russian supply has slightly shrunk. Mm-hmm. So if we see some improvement on that front, that will certainly help crude prices to go down. And but also we have to keep an eye on the OPEC Plus, what kind of decision they take on the output cut.
Right.
So if they go for output cut in the first quarter of the next calendar year, that's a 2026, then we will see some kind of rise in the crude prices.
And in the Indian bullion market, the 24-karat gold was trading almost 1.5% down at 1,38,250 rupees per 10 grams. Silver was trading over 3.1% down at 2,33,390 rupees per kilogram a short while ago.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाले सोने का मूल्य 1.4% से घटकर 1,37,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी भी लगभग 2.7% लुढ़ककर 2,33,394 रुपये प्रति किलो पर चल रही थी। शिशिर जी, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
थैंक यू सो वेरी मच शिशिर जी। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल अराउंड 0.4%, सेंसेक्स ड्रॉप्स nearly 350 points, Nifty settles below 26,000. India's industrial output surges by 6.7% in November, led by manufacturing, and all Australian tariff lines to be zero duty for Indian exports from the 1st of January next year, says Commerce Minister Piyush Goyal. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।